लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि क्रिस्तीय एवं अन्य सभी धर्मों के अनुयायी तथा समस्त शुभचिंतक लोग विश्व में शांति और न्याय को बढ़ावा दें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाने का दस्तावेज है यूएन चार्टर। 26 जून 1945 को आयोजित एक समारोह में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की संस्थापक संधि के पारित होने को 75 साल पूरे होने वाले हैं और इसी सिलसिले में यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद को आयोजित एक बैठक को संबोधित किया और देशों के बीच दरकते भरोसे के इस दौर में सदस्य देशों को यूएन चार्टर के मूल्यों की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने यूएन चार्टर को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक निर्धारक दस्तावेज कहा। महासचिव गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद के 15 दूतों के लिए अपना एक विशेष संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंसक संघर्ष की रोकथाम करने और उस पर विराम लगाने में उनकी खास भूमिका है। ऐसा नहीं है कि युद्ध को कभी टाला ना जा सके, यह हमारे चयन पर निर्भर करता है और अक्सर आसानी से गलत हिसाब लगा लिए जाने के कारण युद्ध होता है और शांति भी कभी परिहार्य नहीं होती। यह कड़ी मेहनत का नतीजा है और हमें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि यह हमेशा कायम रहेगी। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने भू राजनीतिक तनावों के बढ़ने और देशों के बीच दरकते भरोसे के इस दौर में सदस्य देशों को यूएन चार्टर के मूल्यों की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्थापक संधि के पारित होने को 75 साल पूरे होने वाले हैं और इसी सिलसिले में यूएन प्रमुख ने गुरुवार को सुरक्षा परिषद में आयोजित एक बैठक को संबोधित किया।
At this time when global fault lines risk exploding, we must return to fundamental principles.
यूएन महासचिव कह रहे थे कि एक ऐसे समय जब दुनिया में पहले से मौजूद दरारों के फटने का जोखिम बढ़ रहा है, हमें बुनियादी सिद्धांतों पर लौटना होगा। हमें उस फ्रेमवर्क पर लौटना होगा जिसने हमें एक साथ रखा है। हमें अपने घर यानी यूएन चार्टर पर वापस लौटना होगा। यूएन चार्टर में सभी लोगों के लिए समान अधिकारों, राष्ट्रीय स्वनिर्णय के अधिकार का सम्मान, विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे की आवश्यकता की फिर से पुष्टि की गई है और बल प्रयोग के लिए स्पष्ट नियमावली का उल्लेख है। महासचिव ने कहा कि ये मूल्य और उद्देश्य आज भी कायम हैं। ये सिद्धांत कोई रियायत या एहसान नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नींव है। ये शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून का मर्म है। इन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, आर्थिक व सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाया है और अहम बात यह है कि एक और विश्व युद्ध में धकेले जाने से रोका है। महासचिव का कहना था कि लेकिन जब भी इन सिद्धांतों की अवज्ञा की गई है, उन्हें ताक पर रखा गया है या सही भावना के साथ लागू नहीं किया गया, तो उसका नतीजा विनाशकारी रहा है। हिंसक संघर्ष, अराजकता, मौतें, मोहभंग और अविश्वास। हमारी साझा चुनौती यूएन चार्टर के मूल्यों को बरकरार रखना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके वादे को पूर्ण करना है।
किसी भी देश की उन्नति में उसकी संस्कृति, सभ्यता, मूल्य परंपराओं और सहेजी गई धरोहरों का बहुत महत्व रहता है, मगर विडंबना है कि हमारी प्राचीन धरोहर, लोक कलाएं और संस्कृति युद्धरत और अशांत क्षेत्रों जैसे इराक, सीरिया से लेकर यमन, माली और अफगानिस्तान तक अनेक देशों में गुम होती जा रही हैं। न्यूयॉर्क स्थित यूनेस्को द्वारा मुख्यालय में खोई कला को बचाने की कला नामक एक अनोखी कला प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें दुनिया भर से लाई गई ऐसी कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं जो इतिहास की एक झलक पेश करती हैं। इस प्रदर्शनी में उन कलाकृतियों को रखा गया है जिसकी चोरी हो गई थी, पर इसे फिर से बरामद किया गया है। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक अनोखी कला प्रदर्शनी आयोजित की गई है जिसमें दुनिया भर से लाई गई ऐसी कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं जो इतिहास के एक हिस्से की झलक पेश करती हैं। महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने बुधवार को शुरू हुई रिकवर्ड आर्ट द आर्ट ऑफ सेविंग आर्ट नामक इस कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
आमतौर पर कला प्रदर्शनियों में कुछ खास कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाती हैं या फिर किसी कला आंदोलन की झलकियां पेश होती हैं, लेकिन इस कला प्रदर्शनी की खास बात यह है कि यहां प्रदर्शित हर कलाकृति की चोरी हो गई थी और हर कलाकृति को बरामद किया गया। इसमें इटली की पुलिस की जांच पड़ताल महारत और उनके पक्के इरादों के परिणाम नजर आते हैं। इस मुहिम में इटली पुलिस को अक्सर अनेक देशों के साथ मिलकर काम करना पड़ा। इस तरह ये कला प्रदर्शनी बेशकीमती कलाकृतियों की झलक पेश करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ताकत की भी एक तस्वीर पेश करती है। इस अवसर पर बताया गया कि हम सभी ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो हमारी साझा धरोहर को संरक्षित रखने के प्रयासों में बाधा खड़ी करते हैं। इनमें जलवायु संकट से लेकर अशांति, सशस्त्र संघर्ष से लेकर आतंकवाद, सभी तरह की चुनौतियां शामिल हैं।
यूएन विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने पुष्टि की है कि वर्ष 2019 रिकॉर्ड पर अब तक का दूसरा सबसे बड़ा गर्म साल साबित हुआ। यूएन एजेंसी के अनुसार वर्ष 2019 में वार्षिक वैश्विक वृद्धि 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। समुद्र की सतहों पर भी गर्मी का स्तर रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के मौजूदा स्तर को देखते हुए हम इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अंशु शर्मा के साथ बातचीत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में विशेषज्ञ सबा कलाम ने बताया कि तापमान बढ़ने से कृषि सहित जीवन के कई क्षेत्रों पर जबरदस्त दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे और इस चुनौती से निपटने के लिए ठोस रणनीति का तैयार होना आवश्यक है। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
WMO की जो रिपोर्ट आई है कि 2019 में अब तक का दूसरा सबसे गर्म रहा है साल, तो इसमें क्या कहा गया, पहले से क्या अलग है?
देखिए, ये रिपोर्ट जो है ये एक लंबे टाइम फ्रेम को लेती है ऑफकोर्स, और एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम को भी लेती है। इस रिपोर्ट की सबसे अच्छी चीज ये है कि इस रिपोर्ट की टाइमिंग बहुत सही है। टाइमिंग इसलिए सही है क्योंकि अभी अभी हमारा एक काफी बड़ा सम्मेलन जो हुआ स्पेन में, मैड्रिड में, जिसको हम कॉप के नाम से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मेजर जो समझौता होना था अभी, जो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी 2020 से स्टार्ट होने वाला है, तो ये उम्मीद थी कि इस वाले लास्ट कॉप में जो है इसका समझौता हो जाएगा, और इसका समझौता नहीं हुआ है। और जब ये रिपोर्ट आई है WMO की, तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत एक बहुत बड़ा अलार्म है सबके लिए। तो ये एक अर्जेंसी भी दिखाता है कि आप अब जो नेक्स्ट जो कॉप होने वाला है ये ग्लासगो यूके में होने वाला है दिसंबर में, तो अगर आपने अभी भी समझौता नहीं किया तो शायद फिर इतनी देर हो चुकी होगी कि हम जहां पे हम वापस नहीं आ पाएंगे उसके बाद।
तो अभी कार्बन उत्सर्जन को लेके अभी क्या हालात हैं?
अभी हालात देखिए क्या है कि सारे देशों ने, ज्यादातर देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में किया था। उस पेरिस एग्रीमेंट का जो कोर था, वो कोर जो ऑब्जेक्टिव था, उस कोर ऑब्जेक्टिव में ये कहा गया था कि सारे कंट्रीज मिलकर के ये कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर जो राइज है वो 2 डिग्री से ज्यादा नहीं हो, और ये भी कोशिश करेंगे कि हम 1.5 डिग्री तक ही रोक दें प्री इंडस्ट्रियल एरा से। लेकिन जो तमाम तरह की जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी एक यूनेप की भी एक रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम की, जो बात कर दी है कि कितना एमिशन गैप है। अभी जो एमिशन गैप है हमारा, जो पूरे ग्लोबल अगर आप एमिशन गैप देखेंगे, तो उस केस में ये कहा गया है कि हम 3 से 5 डिग्री तक हम बढ़ने वाले हैं अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे। जिन्हें प्रस्तुत कर रहे थे महबूब खान। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
प्रभु तो जीवन दाता, मैं गाऊंगा तेरी स्तुति सदा,
तेरी स्तुति सदा।
प्रभु तू जीवन दाता, मैं गाऊंगा तेरी स्तुति सदा,
तेरी स्तुति सदा।
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन में शुक्रवार को संत पापा फ्रांसिस ने पूर्वी रीति की कलीसियाओं के युवा ऑर्थोडॉक्स पुरोहितों और मठवासियों से साक्षात्कार कर उन्हें अपना संदेश दिया। ऑर्थोडॉक्स महाधर्माध्यक्ष बेरसामियन तथा धर्माध्यक्ष एल सोरियानी के नेतृत्व में रोम आए युवा ऑर्थोडॉक्स पुरोहितों और मठवासियों का संत पापा ने अभिवादन किया तथा पूर्वी रीति की कलीसियाओं के धर्माधिपतियों के प्रति इस मुलाकात के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, प्रत्येक साक्षात्कार और भेंट का अर्थ होता है वरदानों का आदान प्रदान। जब ईश्वर की माता ने एलिजाबेथ की भेंट की थी, तब उन्होंने ईश्वर से मिले वरदान में उन्हें भी भागीदार बनाया था। इसी प्रकार मरियम को देखकर एलिजाबेथ को भी लगा कि उनकी कोख में पल रहा बच्चा उछल पड़ा हो, और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मरियम को आशीर्वाद देने लगी थी। संत पापा ने कहा, मरियम और एलिजाबेथ के सदृशी कलीसिया भी अपने आप में पवित्र आत्मा के वरदानों को समेटे हुए है, ताकि वह सबके लाभ के लिए उसे बांट सके। अस्तु, जब हम ख्रिस्तीय प्रभु येसु के नाम पर एक दूसरे की भेंट करते हैं, तब हम वरदानों के आदान प्रदान में सक्षम बनते हैं। आपकी भेंट आपके लिए ज्ञान में विकसित होने का ही एक अवसर नहीं है, अपितु हम कैथलिकों के लिए भी पवित्र आत्मा के वरदान को ग्रहण करने का सुअवसर है। पूर्वी रीति की कलीसियाओं द्वारा कठिनाइयों के क्षणों में भी सुसमाचार का साक्ष्य देते रहने के लिए संत पापा ने ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं ने हिंसा और युद्ध के घावों के बावजूद येसु ख्रीस्त में अपने विश्वास को बनाए रखा है, जो केवल ईश कृपा का ही फल है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि युवा ऑर्थोडॉक्स पुरोहितों और मठवासियों की रोम यात्रा ईश्वर की महिमा के लिए कैथलिकों और ऑर्थोडॉक्स ख्रिस्तियों के बीच पूर्ण एकता और सहभागिता के मार्ग को प्रशस्त करे, जिसकी अभिलाषा स्वयं प्रभु येसु ख्रीस्त करते हैं। भारतीय कैथलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन ने अपनी 34वीं पूर्णकालिक सभा के उपरांत 19 फरवरी को जारी एक वक्तव्य में वार्ता, परस्पर सम्मान और जन कल्याण हेतु देश की धार्मिक परंपराओं एवं संस्कृतियों के बीच सहयोग का आह्वान किया। राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत की कैथलिक कलीसिया ने वार्ता और सभी के साथ सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रण किया। साथ ही उसने एक संकीर्ण और विभाजनकारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के खिलाफ अपील की, जो प्रमुख प्रभुत्वशाली संस्कृति के अलावा अन्य संस्कृतियों की तौहीन को प्रश्रय देता है। भारतीय कैथलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन की 34वीं पूर्णकालिक सभा में भाग लेने वाले 192 धर्माधीक्षों ने बुधवार को सभा के समापन पर अपना वक्तव्य जारी किया। वार्ता सत्य और उदारता का मार्ग शीर्षक से आयोजित पूर्णकालिक सभा 13 फरवरी से 19 फरवरी तक बेंगलोर शहर में संपन्न हुई। भारत के कैथलिक धर्माध्यक्षों ने संकीर्ण और विभाजनकारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के खिलाफ चेतावनी दी, जो संवैधानिक राष्ट्रवाद से मूलतः भिन्न है। उन्होंने कहा, देशभक्ति संपूर्ण मानव परिवार की भलाई के लिए नागरिकों पर ध्यान निर्देशित करने के रूप में परिभाषित की गई है, जो अलग अलग संबंधों से एकजुट है तथा विभिन्न जातियों, लोगों और देशों को एक सूत्र में बांधती है। कैथोलिक धर्माधीक्षों ने कहा, प्रमुख राष्ट्रवादी विचारधाराएं जो कि प्रमुख प्रभुत्वशाली संस्कृति के अलावा अन्य संस्कृतियों की तौहीन करती हैं, अत्याचारों को प्रश्रय देती हैं। उन्होंने कहा, देशभक्ति राष्ट्र का निर्माण करती है, जबकि छद्म राष्ट्रवाद राष्ट्र की अखंडता, एकता और सद्भाव को नष्ट करता है। और इसी बीच सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में कैथोलिक धर्माधीक्षों ने सरकार से आग्रह किया है कि भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए धर्म को मापदंड न बनाया जाए। गौरतलब है कि भारत का नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में बसने की अनुमति देता है, किंतु मुसलमानों को यह सुविधा प्रदान नहीं करता है। भारतीय धर्माधीक्षों के अनुसार मुसलमानों को इस सुविधा से वंचित करना भेदभावपूर्ण है। जर्मनी के हानाव शहर में गुरुवार को हुए नस्लवादी हत्याकांड की पृष्ठभूमि में रोम के कैथोलिक मानवतावादी संगठन संत इजिदियो ने वेब पर नस्लवादी घृणा अभियान को रोकने की अपील की है। संत इजिदियो संगठन का कहना है कि वेब पर प्रकाशित घृणा अभियान शब्दों से कृतियों में परिणित हो जाता है, इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि शांति, सहिष्णुता और एकीकरण की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, जिसकी नींव पर यूरोप का निर्माण हुआ है। संत इजिदियो संगठन ने हनाव के नस्लवादी आक्रमण में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की तथा जर्मनी में निवास करने वाले संपूर्ण तुर्की समुदाय के प्रति एकात्मता का प्रदर्शन किया। विज्ञप्ति में कहा गया, यूरोप को शांति, सहिष्णुता और एकीकरण के मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, जिसकी नींव पर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप का निर्माण हुआ था। इस उद्देश्य से हम विश्वास के साथ नस्लवादी और जातिवादी घृणा के प्रचार को रोकने की जोरदार अपील करते हैं, इसलिए कि वेब और शब्दों से शुरू होकर यह आक्रामक कृत्यों में बदल रहा है। संगठन ने कहा, तुर्की समुदाय के विरुद्ध आक्रमण जो अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की तरह ही जर्मनी और यूरोप के विकास में योगदान दे रहा है, वास्तव में एक गंभीर अपराध होने के साथ साथ हमारे महाद्वीप में भविष्य के दरवाजों को बंद करता है। इसके विपरीत शांति और साक्षात्कार के शब्दों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जो लोगों के बीच सहिष्णुता और समझदारी को बढ़ावा दे। सीरिया में सेवारत दमिश्क के मारोनी रीति के कैथोलिक महाधर्माध्यक्ष समीर नासार ने वैटिकन न्यूज को दी एक भेंट वार्ता में कहा कि युद्ध के बावजूद सीरिया की कैथोलिक कलीसिया कायम है। उन्होंने युद्धग्रस्त सीरिया में कैथोलिक कलीसिया की उपस्थिति को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया, जहां सैकड़ों हजारों लोग मारे गए हैं तथा लाखों लोग अन्यत्र पलायन के लिए बाध्य हुए हैं। 2011 में राष्ट्रपति असद के शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में शुरू हुई लड़ाई सीरियाई सरकार और सरकार विरोधी विद्रोही समूहों के बीच युद्ध में परिणित हो गई और विगत 9 वर्षों से जारी है। महाधर्माधीश नासर ने कहा कि हिंसा और युद्ध के बीच ख्रिस्तियों और मुसलमानों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने तथा मानवतावादी मदद देने के लिए कैथोलिक कलीसिया की उपस्थिति नितांत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सीरिया में कैथोलिक कलीसिया का इतिहास प्राचीन है। युद्ध से पूर्व सीरिया में 33,000 से अधिक कैथोलिक गिरजाघर हुआ करते थे, जिनकी संख्या अब कम होकर केवल सैकड़ों में रह गई है। तथापि उन्होंने कहा, सीरियाई धर्माध्यक्ष, पुरोहित और धर्मसंघी अभी भी लोकोपकारी सेवाओं द्वारा लोगों की मदद कर रहे हैं तथा वार्ताओं द्वारा लोगों के बीच शांति कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।